मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 13 मार्च 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग नदी घाटी की सभ्यताओं के बारे में बातें कर रहे हैं और इससे ठीक पहले 2 दिनों के ऑडियो में मैंने पहले आपको नील नदी घाटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी और इसके बाद जानकारी दी थी दजला फरात घाटी की सभ्यता के बारे में, जिसे आप मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कहते हैं और सुमेरी सभ्यता भी कहते हैं, सुमेरियंस सिविलाइजेशन यानी कि सुमेर लोगों की सभ्यता, यानी कि 3 नाम इस दजला फरात घाटी के हैं और ये आपको अपने दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बैठा लेना है ताकि किसी तरह का कोई भ्रम आपके मस्तिष्क में प्रवेश न करने पाए। मित्रों, अब इसी क्रम में मैं इस डेली ऑडियो में आपसे सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बात करने जा रहा हूं, लेकिन बात करने से पहले मैं स्पष्ट कर दूं, मैं सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूं, बल्कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास कैसे हुआ मैं इसके बारे में बात करने जा रहा हूं। पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि देखिए, मैं तो खुद हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं, सिविल सर्विस में इतिहास मेरा मुख्य विषय, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे हम लोग के समय में, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे, उसमें से एक इतिहास मेरा विषय रहा है और इनफैक्ट सच पूछिए तो इतिहास से मैं बहुत ज्यादा प्यार भी करता हूं इतिहास के विषय से, इसलिए जब भी इतिहास पर कोई अच्छी किताब पढ़ने को मिलती है तो फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। तो मैंने महसूस किया है कि जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, किताबों में बहुत सी बातें लिखी हुई हैं कि यह नगरीय सभ्यता थी, यहां ये इस तरह की मुहर मिली, उस मुहर में भगवान शिव की तरह का एक चित्र बना हुआ है, वहीं पर शिव बैठे हुए हैं ध्यान मग्न होकर के, उन्हीं के पास एक बैल बैठा हुआ है, नर्तकियों की मूर्तियां मिली हुई हैं। जब नगरीय सभ्यता है तो नगरीय सभ्यताओं के विवरण को हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, किस तरह से चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, बड़े बड़े भवन थे और उनकी जो खिड़कियां थी वो मुख्य सड़क की तरफ खुलती थी, और स्नानागार थे और स्टोरेज हाउस भी थे, इन सब के बारे में आप जानते हैं। और जिससे सिद्ध होता है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी मूलतः एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, एक नगरीय सभ्यता थी, इसके बारे में आप जानते हैं। हालांकि यह भी लोगों के लिए आश्चर्य का विषय है कि बस्ती या कृषि बस्तियों से पहले, या यूं कह लीजिए कि ग्रामीण बस्तियों से पहले, कैसे सीधे सीधे हम एकदम शहरी बस्तियों तक पहुंच गए, नगरी सभ्यता तक पहुंच गए। खैर, चलिए उस पर हम लोग नहीं जाते, फिलहाल मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जिसके बारे में आप जानते हैं और किताबों में बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा भी जा चुका है, लिखा गया है, और आप सच पूछे तो एनसीईआरटी की किताबों में खूब पढ़ते भी हैं, उसके बारे में बताने का कोई विशेष अर्थ नहीं है। फिर मैं स्पेशल आपके लिए क्या कर रहा हूं, कुछ नहीं, मैं यूं कह सकता हूं कि आप लोगों का समय व्यर्थ गवा रहा हूं और नो डाउट कि अपना भी समय लगा रहा हूं। तो मित्रों, इस बात को ध्यान में रख करके कि इन तथ्यों को आप जानते हैं, मैं उनकी चर्चा यहां नहीं कर रहा हूं, मैं यहां जो सिंधु घाटी के विकास की जो चर्चा करने जा रहा हूं वो इनफैक्ट इससे पहले मैं जो 2 सभ्यताओं के बारे में आपसे बात कर चुका हूं, नील नदी घाटी की सभ्यता और दजला फरात की सभ्यता, उसी के कंटिन्यूएशन में मैं सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में आपसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें करने जा रहा हूं और इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ ध्यान में रखकर करने जा रहा हूं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में आप जितना कुछ भी जानते हैं उसमें थोड़ा वैल्यू एडिशन हो सके, यानी कि आप जितना जानते हैं उन्हीं किताबों से दूसरे स्टूडेंट भी पढ़े हुए हैं, उन्हें भी वो सारी चीजें मालूम है, प्रश्न पूछे जाएंगे तो चूंकि किताबें सबने पढ़ रखी हैं और एक तरह से यूं कह लीजिए कि टॉपिक भी कोई बहुत कठिन तो है नहीं, तो हर कोई लिख करके आ जाएगा, लेकिन दूसरों से अच्छा जब तक आप नहीं कर पाएंगे तब तक कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में सक्सेस होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मेरी कोशिश बस केवल इसमें यह बताने की है ताकि आप दूसरों से थोड़ा भिन्न लिख कर आ सकें, भिन्न इस मायने में नहीं कि आपने कोई रिसर्च करके नई बात कह दी है, बल्कि उसमें कुछ आप ऐसी चीजें जोड़ देंगे, कुछ ऐसी चीजें शामिल कर देंगे कि एग्जामिनर को यह लगने लगेगा कि नहीं, आपकी जो जानकारी है सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में वो दूसरों से थोड़ी सी विशेष है, थोड़ी सी अधिक है, या उसको ये भी लग सकता है कि नहीं ये जो तीनों सभ्यताएं हैं इनके बारे में आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, क्योंकि आप तीनों सभ्यताओं को एक दूसरे से इंटरैक्ट करके देख सकते हैं, एक दूसरे से जोड़ करके देख सकते हैं। इसे ही कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का एक छोटा सा हिस्सा। तो दोस्तों उसी बात को ध्यान में रख करके मैं आपसे सिंधु घाटी की सभ्यता के विकास के बारे में कुछ बातें करने जा रहा हूं, जो आपको बहुत कम ही किताबों में मैं समझता हूं कि देखने को मिलेगी। तो देखिए आइए अब शुरू करते हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं मित्रों, जो पहले हमने नील घाटी, नील नदी की घाटी की सभ्यता की बात की थी, वो लगभग 3500 वर्ष पूर्व बीसी की सभ्यता थी। फिर हमने जब सुमेर सभ्यता की बात की तो याद करने की कोशिश कीजिए कि वो 3100 वर्ष पूर्व, यानी कि सबसे पुरानी सभ्यता अगर हम इस क्रम में माने तो आप कह सकते हैं कि नील नदी की घाटी की सभ्यता 3500 BC, फिर दजला फरात की घाटी की सभ्यता 3100 BC, और इसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता जो 2300 और 2500 कह लीजिए, जो भी आप इसमें से लेना चाहें बीसी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता सिर्फ इससे सिद्ध होता है कि पहले की इन दो सभ्यताओं से बाद की सभ्यता है, ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आप देखें कि फिर जब हम सिंधु घाटी की सभ्यता कि में जो हमें चीजें मिली है खुदाई करने पर वो जब प्राप्त होती हैं तो एक प्रकार से हम अलग तरह के कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। कंफ्यूजन इस मायने में कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसमें जो भी चीजें मिली हैं, जिसकी चर्चा अभी मैंने थोड़ी सी की भी और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये बहुत ही एक उन्नत किस्म की नगरीय सभ्यता रही है। याद रखिए, उन्नत किस्म की नगरीय सभ्यता, सामान्य नगरीय सभ्यता नहीं, उन्नत किस्म की। बल्कि कुछ मायनों में तो यह इससे पहले की जो दो सभ्यताएं हैं उनसे भी ज्यादा बड़ी जान पड़ती है, महत्वपूर्ण जान पड़ती है। उदाहरण के तौर पर जैसे आप मेसोपोटामिया की सभ्यता को ले लीजिए। देखिए अब मैं कुछ भी इस तरह का नाम लूंगा, है ना, दजला फरात की सभ्यता भी कह सकता हूं, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कह सकता हूं, और सुमेरियन सभ्यता भी कह सकता हूं। तो ये तीनों एक हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और होना भी चाहिए दोस्तों कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं और उस टॉपिक में कोई ऐसी बात आ गई है जिसका संबंध किसी दूसरे टॉपिक से भी है तो आपको चाहिए कि मन ही मन आप उसे दोहरा ले, वहीं पर अवसर है। ये नहीं कि आप एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो नहीं दूसरे से तो उसका कोई संबंध ही नहीं है तो आप चुपचाप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तेजी के साथ, नॉट एट ऑल। जैसे अगर कहीं सुमेर सभ्यता का नाम आता है तो थोड़ा सा रुकिए, सोचिए अच्छा वही सुमेर सभ्यता, ठीक है फिर आगे निकलिए। ये पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका होता है, स्पेशली अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप देखेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जो हमें ईंटें मिली हैं, ईंट पक्की ईंटें मिली हैं, मोटी ईंटें मिली हैं, मजबूत ईंटें मिली हैं। जबकि आपको ध्यान होगा कि दजला फरात के बारे में मैंने आपको बताया कि वहां पतली ईंटें हैं और वो भी कच्ची ईंटें हैं, कच्ची ईंटें तभी तो उस पर खुदाई कर पाते थे ना, तब कच्ची ईंटों की तुलना में तो पक्की ईंटों वाली सभ्यता ज्यादा उन्नत सभ्यता हुई। फिर जब हम मेसोपोटामिया के नगरीय पद्धति को देखते हैं तो मेसोपोटामिया की जो शहर बने वो बड़े अव्यवस्थित तरीके के हैं, सड़कें उस तरह से व्यवस्थित नहीं है जो कि हमारे सिंधु घाटी की सभ्यता में है। तो इस दृष्टि से भी जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो उन्नत सभ्यता मालूम पड़ती है। तो अब हमें देखना यह है कि ये जो उन्नत सभ्यता सिंधु घाटी की यहां दिखाई दे रही है ये क्या अचानक आ गई या कैसे हुआ, इसको बसाने वाले लोग कौन है, इसको बनाने वाले लोग कौन है, क्या कोई भी सभ्यता कोई भी संस्कृति सीधे नगरीय संस्कृति में पहुंच सकती है। उसके पहले जरा सा आपको कृषि संस्कृति जैसी कोई बात तो चाहिए, कृषि बस्तियां चाहिए, वो हमें यहां देखने को नहीं मिलते। तो ये क्या मामला है, तो इसीलिए सवाल उठता है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है ये लोग कौन थे, ये कहां से आए थे, किन्होंने इस सभ्यता को, किन लोगों ने इस सभ्यता को की शुरुआत की। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है और लगातार इस पर आप यूं कह लीजिए कि विवाद होते रहे हैं और लोग अपने अपने ढंग से अपनी अपनी बातें बताते रहे हैं। मित्रों इसमें जो इतिहासकारों का एक जो सबसे बड़ा वर्ग है वो ये मानता है कि सभ्यता की जो किरण है सभ्यता की वो मेसोपोटामिया में फूटी और वहां से फिर मेसोपोटामिया से इजिप्ट होते हुए वह भारत आई। अब आप देखिए कि हमें मेसोपोटामिया का नाम आ गया, सुमेर सभ्यता का, कि वो सभ्यता, अब देखिए कि आपको ध्यान होगा सभ्यता की किरणें फूटी, अगर वो ये बात कह रहे हैं तो आप दजला फरात की तुलना आप बाकायदे मिश्र वाले से करके देख लीजिए, नील नदी वाले से, तो आप पाएंगे कि नहीं, जो सुमेर की जो सभ्यता है दर्शन की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से ज्यादा बड़ी सभ्यता है। जो इराक वाला है, इसने संख्या दी, देखिए 60 तक की संख्या यहां बनी, महीनों को वर्ष को कैसे विभाजित करेंगे वो इन लोगों ने ये बताया, तो ये ज्यादा बड़ी सभ्यता थी, ज्यादा उन्नत सभ्यता थी। तो यहां से वो किरण फूटी और फिर इजिप्ट से होते हुए क्रमशः भारत आई, और जो भारत आई इसको प्रमाणित करने के लिए वो बकायदे कुछ तथ्यों का उल्लेख भी करते हैं, ऐसा नहीं कि वो सीधे सीधे अपनी बात कह देते हैं। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता में पक्की ईंटें मिली, ठीक है, चलिए पक्की ईंटें मिली, और हमें यह भी तो ध्यान में रखना होगा ना कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो लगभग 500-600 साल बाद की सभ्यता है, यानी कि अगर मेसोपोटामिया से होती हुई जो सभ्यता आई होगी तो 600 साल में वो कुछ चीजें तो जो मेसोपोटामिया में पहले की थी उनको डेवलप कर चुके होंगे। उदाहरण के तौर पर मेसोपोटामिया में कच्ची ईंटें मिली हैं, लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता तक आते आते वो पक्की ईंटों में बदल गई है, तो 500-600 साल में ये डेवलप हो सकता है। तो ईंटों के इस साम्य को लेकर भी कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये जो लोग आए हैं सिंधु घाटी की सभ्यता में ये बेसिकली मेसोपोटामिया से ही आए हैं, और जब नगरीय सभ्यता की बात होती है तब भी वो मेसोपोटामिया का उदाहरण देते हैं, क्योंकि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है जिसकी हम बात करते हैं आपको मालूम है कि वो भवनों के लिए बहुत प्रसिद्ध था, और ये खासकर ये जो देश है, ये जो मेसोपोटामिया कल्चर है वो तो अपने भवनों पर बड़ा गर्व भी करता है, अपने सिस्टम पर बहुत उसको प्राइड होता है कि हम सब इतने अच्छे नगरों के निर्माता रहे हैं। तो उन लोगों ने आकर के यहां सिंधु घाटी की सभ्यता में नगर बना दिए। फिर मोहरें भी मिलती हैं, तो मोहरों से भी कुछ लोग कहते हैं कि ये मेसोपोटामिया से आई है, लेकिन कुछ लोग फिर इसका खंडन भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से मान ही लें, कुछ लोग अपना खंडन भी करते हैं। देखिए खंडन अब किस आधार पर होता है, पहली बात तो जब मोहरों की बात होती है, मोहरे तो जो हड़प्पा की जो मोहरे हैं वो सेल खड़ी की बनी हुई हैं, और मूलतः वो या तो वर्गाकार है या आयताकार है, जबकि जो सुमेर सभ्यता की जो मोहरे हैं वो बेसिकली मिट्टी की बनी है और बेलन के आकार की है। तो यहां पर एक फर्क दिखाई दे जाता है, और वहां की जो मोहरे हैं वो उस तरह की नहीं है जिस तरह की हड़प्पा की सभ्यता में पाई जाती है। फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि जो हड़प्पा के जो लोग हैं टेक्निकली वो मेसोपोटामिया से पिछड़े हुए हैं, हालांकि देखिए नगर निर्माण की योजना में हम सुमेर सभ्यता से उनको आगे पाते हैं, लेकिन बहुत से मामलों में वो पिछड़े हुए थे। पिछड़े हुए के बारे में जो एक उदाहरण देते हैं, मुझे लगता है कि जो बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकता है वो ये कि सुमेर के लोगों ने जो औजार बनाए वो बहुत मजबूत थे, और ये पाया गया है कि अपने औजारों को मजबूती प्रदान करने के लिए उन्होंने बीच के हिस्से को मोटा बना दिया है, जबकि हड़प्पा में जो औजार मिले हैं उसके नाम पर क्या मिले हैं आपको ध्यान होगा, चाकू मिल गए, खुरकी मिल गए, वाड़ाग्र मिल गए, भाला मिल गया, ये सब मिले हैं, और ये सब चपटे हैं, ये सब चपटे हैं, और चपटे होने के कारण ये कमजोर हैं, इसलिए कहते हैं कि नहीं, जरूरी नहीं है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने ही यहां के सभ्यता को विकसित किया हो। नगरी सभ्यता में जो अंतर है उसके बारे में हम लोग देख ही चुके हैं, यहां तक कि जो भांड मिले हैं, बर्तन मिले हैं, दोनों में वो भी काफी फर्क है, और जो लिपियां मिली हैं लिपियों में भी बहुत फर्क होता है। तो ऐसे में जैसे मेसोपोटामिया में मंदिर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, मैंने शायद उस समय में चर्चा इस बात की नहीं की थी कि जो मेसोपोटामिया सभ्यता है वो शहरी बस्तियों और मंदिरों के लिए बड़ा फेमस है, मंदिर शब्द शायद छूट गया था, वहां मंदिर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं नगर में, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में आपको मंदिर नाम की कोई चीज ही नहीं मिलेगी, मतलब कोई ऐसी बिल्डिंग ही नहीं मिली, इमारत नहीं मिली है जिसको देख करके आप मंदिर के बारे में अनुमान लगा सके कि हो सकता है कि ये मंदिर हो, ये स्थिति नहीं है। तो दोस्तों अब दोनों ही बातें देखिए, इतिहास तो ऐसा ही होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सुमेर सभ्यता के लोगों ने सिंधु घाटी की सभ्यता को बनाया, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो लोग नहीं थे। तो बट नेचुरल है कि फिर कौन लोग थे। तो एक वर्ग ये भी मानता है कि नहीं, जो द्रविड़ के लोग थे, द्रविड़ के लोगों ने सिंधु घाटी की सभ्यता को जन्म दिया। और फिर एक थ्योरी है, आप जानते हैं कि बाद में फिर आर्य आए और यहां द्रविड़ पहले से रह रहे थे, तो उन आर्यों के पास चूंकि घोड़े थे और लोहे के औजार थे, आर्यों की बड़ी विशेषता ही है कि उन्होंने घोड़े को पाल लिया था और उनके पास लोहे के अस्त्र थे, तो उन्होंने इन द्रविड़ियंस को पराजित कर दिया। बाद में ये द्रविड़ियंस को खदेड़ दिया वहां से, तो ये नर्मदा नदी के नीचे होते होते साउथ में चले गए, तो उन्हें ही हम आप द्रविड़ संस्कृति के लोग कहते हैं। तो द्रविड़ लोगों ने इसका निर्माण किया है। इसके पक्ष में वो कुछ तर्क भी देते हैं कि खुदाई में जो अस्थि पंजर पाए गए, तो उनके जो अस्थि पंजर हैं उनमें कुछ भूमध्य सागरीय तत्व पाए गए, जो भूमध्य सागर के आसपास रहने वाले लोग में होते हैं, और जो द्रविड़ है उनको भूमध्य सागरीय जाति का माना जाता है। फिर कुछ क्रियाकलाप द्रविड़ लोगों के ऐसे होते हैं जैसे पत्थर की पूजा करना, शिव पूजा करना, मातृ देवी की पूजा करना, ये द्रविड़ लोगों में बहुत हैं। आप देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों में भी ये बातें पाई जाती हैं। तो इसके आधार पर उन्होंने कहा कि नहीं, यहां की सभ्यता को जो विकसित करने वाले लोग हैं वो द्रविड़ रहे होंगे। लेकिन फिर एक प्रश्न खड़ा होता है, प्रश्न ये खड़ा होता है कि ठीक है इस बात को माना जा सकता है, लेकिन जो द्रविड़ संस्कृति है उसमें नगर कभी रहे ही नहीं है, द्रविड़ संस्कृति नगरीय संस्कृति नहीं रही है, तो ऐसी स्थिति में ये सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यह तो मूलतः नगरीय संस्कृति है। तो यह भी बात खंडित हो जाती है। फिर एक और वर्ग आता है, और खासकर इस वर्ग में मित्रों हम रोमिला थापर को पाते हैं। रोमिला थापर का नाम आप बहुत अच्छे से जानते हैं, भारतीय इतिहासकार हैं और बहुत ही सम्मानजनक तरीके से उनका नाम लिया जाता है। फिर वो इस वर्ग में शामिल हुए जो इस बात को मानता है कि जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता है उसके विकास में मूलतः ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृतियों का योगदान रहा है। ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृति, इसका योगदान सबसे ज्यादा रहा है, जिसमें रोमिला थापर भी हैं। खैर मित्रों अब मुझे अपनी बात यहीं समाप्त करनी पड़ेगी क्योंकि वक्त काफी हो चला है। देखिए मैंने यहां खासकर जो आपको बताने का उद्देश्य था वो था कि मैं आपको जो मेसोपोटामिया और नील नदी घाटी की सभ्यता के बारे में बता चुका हूं वो किस तरीके से सिंधु घाटी की सभ्यता को समझने में आपकी मदद करेगा मैं स्पष्ट कर सकूं, और फिर सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ थोड़ी सी अलग तरीके की चीजें बता सकूं जो इस टॉपिक को दूसरों की तुलना में आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण बना सके। तो मित्रों अब इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।